डॉक्टर साहब, कमर दर्द का जो मसला है इसके बारे में बताइए हमारे नाज़रीन को।
देखिए, कमर दर्द जो है सर दर्द के बाद जो हमारे हमारे अगर मुआशरे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिस्म के किसी हिस्से में अगर दर्द होता है तो वो कमर का हिस्सा है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं और इसका इन्हिसार भी इस चीज़ पे होता है कि हमारी जो है जिस्मानी सलाहियत किस तरह की है, हमारा जिस्म जो है कितना मजबूत है, हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में क्या काम कर रहे हैं। और ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ के पूरा आपके गर्दन वाला हिस्सा हो गया, फिर जो है वो छाती वाला सीने वाला हिस्सा हो गया, फिर नीचे कमर वाला, नीचे सबसे जो है उसके, तो इसमें कर्व होते हैं। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसमें एक कर्व होता है, एक ही वो सी शक्ल में जैसे हम कह लें। तो जैसे जैसे फिर वो बच्चा अपने सर को सहारा देना शुरू करता है तो आपके गर्दन वाले जो हिस्से में वहाँ पे एक सामने की तरफ फिर वो एक कर्व वजूद में आता है। फिर जब बच्चा जब खड़ा होना शुरू करता है तो उस वक्त जो है वो कमर वाला हिस्से का जो कर्व है ये वजूद में आता है। अब रीढ़ की हड्डी जो है वो इसमें मुख्तलिफ जो है हड्डियाँ होती हैं, 33 हड्डियाँ हैं। फिर वो कुछ बाद में जो है वो फ्यूज़ हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो बाकियों के दरमियान जो है एक जो हरकत का दायरा होता है एक ख़ास हद तक वो रहता है। यानी ये हड्डी हम कहते हैं आम अल्फाज में, ये मुख्तलिफ तरह की हड्डियों, ये जो वर्टिब्राज हैं इनको हम मेडिकल की इस्लामी कहते हैं, इनका एक मजमूआ है। जो गर्दन वाले हिस्से में इनकी तादाद 7 है, फिर वो सीने वाले हिस्से में 12 है, तो इसी तरह वो नीचे कमर वाले 5 हो गए, तो वो नीचे दूसरे जो है वो बाज फ्यूज होके जो है कॉक्सस वाला हिस्सा, सैक्रल वाला। तो ये इसमें मुख्तलिफ तरह की खराबियां पैदा हो सकती हैं। अब इसके मुख्तलिफ काम हैं। अब एक तो हमारा जो ज़ाहरी एक ढांचा जिस्म को फराहम किया होता है ऊपर से सर से लेके नीचे तक है, इसी के साथ आके पसलियों ने मिलना होता है, इन्हीं इसी के जो वर्टिब्राक्स के पिछले हिस्से होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जो आपके पट्टे हैं ये आके इत्साल की एक जगह होती है। फिर ये हराम मक्स जो आपके एक नर्वस सिस्टम होता है आपके जिस्म में, हम जो भी महसूस करते हैं, सोचते समझते हैं, वो अब दिमाग में हो गया। आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो आपके दिमाग और हराम मक्स, अब हराम मक्स को जो एक तहफ़ फराहम किया होता है वो भी रीढ़ की हड्डी ने किया होता है। अब ये जो वर्टिब्रास हैं इनके पीछे एक पूरी एक कैनाल सी जाती है, हराम मक्स उसमें से गुजरता है। और अगर खुदा न खास्ता हराम मक्स को चोट लगती है तो वो आपके जो नीचे वाला थर्ड है उसका इंसार भी इसी चीज़ पे होता है कि आपका हराम मक्स सही है कि नहीं है। अगर उसको चोट लगती है तो आपका नीचे वाला थर्ड काम करना छोड़ देता है। तो अब इसी तरह जो है अब सर में चोट लगती है तो अब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है, सर के जो नर्वस सिस्टम हमारा मुख्तलिफ हिस्से कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जो हिस्सा भी मुतासर होता है वहाँ पे फिर जो जो उसकी फालियत होती है वो मुतासर होती है। अब जब ये हराम मक्स है रीढ़ की हड्डी से गुजरता, इससे एक तो बात की कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, फिर इसके साथ एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो बाहर से जो एक शाखें असाब की जाती हैं और बाहर से जो पैगाम हमारे दिमाग तक आ रहा होता है, तो ये रीढ़ की हड्डी में से जो है वो शाखें मुख्तलिफ जो है हिस्सों को ये तकसीम करती हुई गर्दन वाले हिस्से से फिर सीने वाले नीचे जो है, ताकि इनका मकसद ये होता है कम्प्लेक्सेस बने होते हैं, एक जैसे हाईवे होता है कि तेज़ी के साथ जो है वो पैगामात को मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाए। अब कमर का जो मसला बनता है तो वो तकरीबन 85-90% ये मसला मैकेनिकल होता है, ये हमारी हरकत की वजह से होता है, कोई चोट लगती है, इस तरह की वजूहात होती हैं तो जो खुद ब खुद जो है एक ख़ास अरसे के बाद ठीक होता है या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है उस तरह की करते हैं। तकरीबन 10% कह लें कि वो उसमें कोई पैथोलॉजी आ जाती है।
माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, इसमें एक जो मसला होता है वो ये है कि उम्र इसकी देखी जा रही है कमर के दर्द की कम होती चली जा रही है। यानी एक ज़माने में ये होता था भाई 40 साल के हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अगर कमर में दर्द ये सब हो रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि तब 20-25 साल के लड़कों में भी और ख़वातीन में भी ये चीज़ दिख रही है।
ये शुरू में बात की थी कि उसका इन्हिसार इस चीज़ की है कि आपकी जिस्म की मजमूई सलाहियत किस तरह की है। यानी बाज़ लोग होते हैं उनका रोज़मर्रा की रूटीन इस तरह की है कि वो उन्होंने कामकाज नहीं करना, वर्जिश नहीं करनी, बहुत ही एक जो है सादा सा उन्होंने कहते हैं कि आराम तलब रूटीन होती है उनकी, इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ऐसी तर्ज ज़िंदगी के साथ हड्डियां मजबूत नहीं होती, या बेहतर खुराक उन्होंने नहीं ली। बस लोग उन रात को जाग रहे होते हैं, दिन को सोना, सूरज की रोशनी उनको कम मिल रही है, विटामिन डी की कमी है, फिर कैल्शियम जो है वो खुराक में पूरी नहीं, तो वो अपनी उम्र के जिस हिस्से में जाके ये चीज़ें जो है जिस्म से कम होनी होती हैं, तो वो उम्र से पहले ही उस जो एक ख़ास हद होती है उससे पहले ही वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं, वो पहले से भी उतनी नहीं होती। और वैसे भी 30 साल की उम्र तक ये होता है कि आपकी जो जिस्म की हड्डियां हैं इसमें कैल्शियम की मकदार बढ़ती रहती है साथ साथ, आप जो भी खुराक लेते हैं वो हड्डियों में ज़खीरा होती जाती है जो अजाफी कैल्शियम होती है। अब कैल्शियम के मुख्तलिफ हमारे जिस्म में ये अफाल सर अंजाम देती है, तो उस वहाँ जहाँ जहाँ पर भी उसको ज़रूरत होती है खून में वो पहुँचती रहती है। लेकिन 30 साल के बाद ये होता है कि जब जिस्म में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर हड्डियों से जो ज़खीराशुदा कैल्शियम होती है तो वो फिर कैल्शियम जिस्म लेता है। और फिर ये इसमें जो नेचुरल कुदरती तौर पे इलास्टिसिटी होती है इसके मसल्स के फाइबर में हो गए, इसके टेंडोन लिगामेंट्स वगैरह ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, ये जैसे जैसे उम्र में इजाफा होता है तो उसके साथ साथ इसमें जो एक कुदरती एक लचक होती है उसमें कमी आती जाती है। तो इसलिए ये होता है कि जैसे उम्र में ज़्यादती होती है तो फिर इस तरह के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब चूंकि मुख्तलिफ तरह की साख्तें हैं इसमें, इसका मसला न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, वो पट्ठों का भी मसला हो सकता है, किसी लिगामेंट पे जो है वो सब ट्रेन वगैरह आया है तो वो मसला भी हो सकता है, कि किसी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है वहाँ पे भी मसला हो सकता है, फिर जो रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द जोड़ होते हैं फैसल जॉइंट्स वगैरह, अगर या इसके अंदर जो दो हड्डियों के दरमियान एक नेचुरल मूवमेंट होती है उनमें अगर स्टिफनेस आती है, उस मूवमेंट में कमी आती है, तो उसकी वजह से आपके पट्ठे जो हैं वो दर्द करना शुरू करते हैं। फिर बैलेंस होता है जिस्म के दोनों अतराफ में, आपके जो दाईं समत है और बाईं समत, इनके दोनों अतराफ में जो पट्ठों ने एक तरह से उसको हिफाजत दी होती है, उसको जकड़ा होता है
जी,
तो एक पूरा बैलेंस के साथ होता है। और अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से, जिस तरह हमने बात की कि वर्टिब्राज की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, एक तरफ का बैलेंस जो है वो ख़राब होता है, तो वो दूसरी तरफ पट्ठों पे असरअंदाज हो रहा होता है।
नदीम साहब दुबई से हम लोगों से पूछते हैं कि कमर के नीचे वाले हिस्से में अगर दर्द हो तो कहाँ से पता चले कि ये डिस्क का मसला है या फिर मसल्स का मसला है?
हाँ जी, जब इस तरह का केस आते हैं कि जहाँ पे हमने डायग्नोस करना होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ज़रिए कि ये दर्द है इसका ओरिजिन इब्तदा कहाँ से है, तो एक तो हिस्ट्री ली जाती है कि हुआ क्या था, फिर उसकी जो इलामत होती हैं मरीज़ की उन इलामत के मुताबिक पता लगाया जाता है कि ये मसला जो है मसल का है। देखिए, जब मसल का मसला होता है तो वो हरकत के साथ जो है वो दर्द करेगा, जब वो मसल मुतलका जहाँ पे चोट लगी होती है या अंदर कोई उसकी उसमें खराबी है तो उसको जब हरकत करनी पड़ती है तो उसमें कुदरती तौर पे ये होता है कि फिर वो दर्द उसमें शिद्दत आती है। अब ये जो डिस्क होती है, डिस्क के साथ हरामक्स की जिस तरह बात की या इसके इर्द गिर्द से नर्व रूट सभी तस्वीरें भी आई उसमें बेहतर तौर पर
थोड़ी सी समझ आएगी।
तो जब डिस्क कि कभी इस इन्हिसार इस चीज़ पे होता है कि मुतलका डिस्क किस शिद्दत के साथ मुतासर हुई है, अगर तो वो उसमें डिस्क बल्जिंग है या बाहर की तरफ निकली हुई है, साथ जो नर्व रूट्स जा रही हैं उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो फिर आपके जो निचले वाला धड़ होता है टांगों की तरफ वो दर्द उसके में शरायत कर रही होती है, तो वहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि मसला जो है वो डिस्क का है। फिर उसकी रेंज ऑफ मोशन जो कमर वाले हिस्से की वो सामने की तरफ या पीछे ला के झुका के मरीज़ को देखा जाता है मुख्तलिफ तरह के, फिर वो टेस्ट होते हैं हम टांगे वगैरह जो है वो एक एक करके उठा के SLR उसको हम मेडिकल की सलाह में कहते हैं, तो या दूसरे इस तरह के फिज़िकल टेस्ट होते हैं, तो इनकी बुनियाद पर अंदाज़। लेकिन आम फर्द के लिए ऐसे ही है कि अगर आपको दर्द जो है वो लगातार है और नीचे की तरफ जा रहा है आपकी टांगों की तरफ जाता है, तो वो मसला जो है न्यूरोलॉजिकल होगा, अच्छा। आपके किसी नर्व पे जो है वो दबाव आ रहा है। लेकिन अगर वो सादा सी हरकत के साथ उसी एक ही जगह पर कमर वाले हिस्से में ख़ास पट्ठों में दर्द रहता है तो वो दर्द जो है उसमें पट्ठों का है। तो अब देखें, ये जिस तरह हमने वक्फे से पहले बात की थी कि रीढ़ की हड्डी, इसमें मुख्तलिफ तरह की हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी, और उस वो मिला के एक हड्डी को तशकील देती हैं। अगर इसको सामने से देखा या जो पीछे से देखा जाए तो वो दाएं और बाएं तरफ जो दो हड्डियाँ नज़र आ रही हैं तो इस तरह हमें रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है, लेकिन अगर साइड से एक्सरे वगैरह जब लेते हैं तो वो दरमियान वाले हिस्से और जिन कर्व्स की बात की तो वो इस तरह दिखाई देते हैं। और इन कर्व्स की ये जो जाविये बनते हैं इनकी बहुत अहमियत है। अगर तभी इसका जो जाविया है वो रहता है तो जिस तरह हमने बैलेंस की बात की कि दोनों अतराफ में दाएं बाएं और आगे पीछे, तो वो एक जो दबाव दोनों अतराफ में होता है वो बराबर रहता है, पट्ठों पे किसी भी खास जगह पे जो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो दबाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये कर्व जो हैं ये इसमें अजाफा होता है, यानी ये बढ़ जाते हैं या कम होते हैं, अगर स्ट्रेटनिंग हो फिर भी मसला होता है, अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर भी फिर मस्कुलर इम्बेलेंस होता है, आपके जो पूरा एक जिस तरह एक नीचे से लेके पाँव से लेके सर तक जो है एक चेन की शक्ल में ये पूरा जिस्म होता है, अगर जिस्म के एक हिस्से में अजाफी दबाव होता है तो उसके असरात जो हैं वो दूसरे हिस्से पे आपके सामने आ रहे होते हैं। हत्ता ये भी होता है कि अगर आपका जूता मुनासिब नहीं है तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है इस पे असर हो रहा होता है, ये कमर दर्द का मसला सामने आना शुरू हो जाता है। अब देखें ये सैक्रोइलिक जॉइंट जो है ये जिस्म में ये जिस तरह ये कूले वाला जो हिस्सा होता है इसके थोड़ा सा ऊपर करके ये जिस जहाँ पे वो डंपल से दो पड़ते हैं ये दो जोड़ होते हैं दाएं और बाएं। अब इनका एक बुनियादी काम होता है कि ऊपर से जो एक दबाव आ रहा होता है आपका वजन का, इन्होंने इस इन दो जोड़ों ने वजन जो है वो नीचे की तरफ मुंतकिल करना होता है, और यहाँ से चूंकि मुंतकिल होता है और फिर जब हम मुख्तलिफ तरह की रोटेशनल मूवमेंट करते हैं जिसमें जो घूमने वाली होती हैं, मसलन फुटबॉल आप खेलते हैं या टैक्सी से आप गाड़ी से उतरते हैं, आप उतरते हुए पैर बाहर रखते हैं और फिर जब घूमते हैं तो फिर यहाँ पे एक मूवमेंट आ रही होती है। बस का तो ये होता है कि इस जोड़ में एक ज़रूरत से ज़्यादा मूवमेंट आ गई, असल जो इसका एक हरकत का दायरा होता है 4 डिग्री तक जो है वो थोड़ा सा इजाज़त देता है कि ये हरकत करे, मामूली सी हरकत होती है इसमें। अगर हरकत ज़्यादा हो जाए और इनको लिगामेंट्स ने घेरा होता है, फिर उसके बाद पट्ठों की हिफाजत होती है, अगर हरकत ज़्यादा हो जाए वो भी मसला है, अगर हरकत जो है इसमें स्टिफनेस आ जाती है, हरकत में कमी आ जाती है तो वो भी मसला है। फिर एक तरफ कमी है, इसका दर्द जो है वो एक ख़ास नुक्ते पर मुतमरकस होता है, इसी जहाँ पर जोड़ होता है वहीं पर जो है वो एक पॉइंट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर वो दर्द है, और वो इस तरह के दर्द बहुत तंग करते हैं। पूरी जो है आप चलने फिरने में या बैठे हुए वो लगातार दर्द होता रहता है, फिर मूवमेंट के साथ मूवमेंट जो हरकत है आपकी वो पूरी तरह नहीं होती, तो इसलिए बुनियादी तौर पे इन चीज़ों के बारे में आगाही बड़ी ज़रूरी होती है कि
कौन लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं इन इस किस्म के दर्द से।
देखिए ये जो सैक्रोइलियक वाला जो दर्द है इसमें जिस तरह हमने बात की कि ये कमर दर्द के जो मरीज़ होते हैं अगर उनकी एक परसेंटेज ले ली जाए कि फ़र्ज़ करें कि किसी माशरे में कमर दर्द की जो शरह है वो 29% है, 29%, तो फिर उन्हीं में से जब उन्हीं पे अगर हम टेस्ट होते हैं इसके मुख्तलिफ प्रोवोकेटिव टेस्ट उसको कहा जाता है कि जिसमें फिर कमर दर्द के जो मरीज़ हैं क्योंकि इलामात मुश्तरक होती हैं, अब वो पता नहीं होता कि ये मसला कमर दर्द का जो है इसकी इब्तदा कहाँ से हो रही है, तो उनमें तकरीबन जो है वो 12-13% इसके जो है वो या 12 से लेकर 26% तक कह लें कि वो ये सैक्रोइले के पेशेंट
29%,
हाँ जी उस 29% में से, यानी जो कमर दर्द के मरीज़ हैं उन में से तकरीबन जो है इतने 12 से लेके 26% तक मुख्तलफ जो हैं मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोग उसमें शरह जो है मुख्तलिफ होती है, और जिन लोगों में जो रोटेशनल मूवमेंट ज़्यादा होती हैं उनमें ये जो है इसके सैक्रोइलिक का मसला ज़्यादा होता है, फिर ख्वातीन में जब हामलगी के दौरान जचकी के जो है वो बाद हार्मोनल तब्दीलियाँ आती हैं तो ख्वातीन में भी ये मसला बहुत ज़्यादा आता है। उसमें ये होता है कि जो हार्मोन्स की वजह से लिगामेंट्स जो हैं वो ढीली पड़ती हैं, वो जब ढीली पड़ती हैं तो इसको जोड़ को जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा मूवमेंट आ रही है तो वो भी खतरनाक होती है, तो वहां से फिर जो दर्द निकलता है वो भी बहुत तंग कर रहा होता है। अब इस तस्वीर में अगर देखें तो अब मुख्तल तरह के जो है, जिस तरह जावियों की बात की थी, तो ये मुख्तल तरह के वो जाविये दिखाए गए हैं। अब कोई भी जब जाविया कम होता है, उसमें नाम इसको मुख्तलफ दिए गए, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन बुनियादी नुकता ये है कि जब वो जाविये डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो उसका असर जो है उन पट्ठों पे पड़ रहा होता है जो इसको सहारा दे रहे होते हैं। फिर अगर एक तरफ जो है वो पट्ठों को ज़्यादा कुवत बर्दाश्त करनी पड़ती है, बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है, तो पट्ठों पे जो है वो स्ट्रेन की सूरत हाल में चले जाते हैं, वहाँ पे थकावट होती है। जब मसल फटीक होती है तो एक ख़ास दौरानिए के बाद ये होता है कि वहाँ पर दर्द का एहसास शुरू हो जाता है।
बहुत ही अच्छा सवाल आया है यहाँ पर डॉक्टर साहब, पूछा गया है कि अगर डिस्क के मसले का इलाज न किया जाए तो क्या ये यानी आगे जाके फालिज भी हो सकता है यानी?
हाँ जी, ये इसमें एक तस्वीर भी है हमारे पास डिस्क से मुतल्लिका, वो जब सामने आती है तो उस पर मज़ीद वाज़ेह तौर पे नाज़रीन को इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन बुनियादी इसमें नुक्ता ये होता है कि देखें, ये वाली डिस्क है, अब जो इसके डिस्क के दो हिस्से होते हैं, अब वो एक बाहर वाला जो है एनुलस पल्पोसस जो है और न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलस फिब्रोसस, तो ये अब जो नीचे अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये जेलीनुमा होता है, अब वो जो बाहर है इसके ये कदरे सख्त होता है। अब देखें जो पीले रंग में नर्व्स दिखाई गई हैं वो अब नीचे मुख्तलिफ अतराफ में जो है इन्होंने एक असर रसानी करनी होती है, जो ऊपर से पैगाम हैं नर्व आसाबी निज़ाम जो है उसको कंट्रोल कर रही होती हैं। अब देखें अगर मसला हो गया है, अब ये दो वर्टिब्रा इस वाली तस्वीर में देख सकते हैं, उसके दरमियान जो है डिस्क होती है, एक शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे ये काम कर रही होती है, खुदा ना खासा किसी को मसला है डिस्क का, डिस्क के जो है वो असाब पे दबाव डाल रही है, और अब मैं उस सवाल की तरफ अब आता हूँ। अब अगर तो फ़र्द को पता है कि मुझे ये मसला है और मसले की नौइयत हल्की है, बहुत शिद्दत शदीद नहीं है, वो एहतियात कर लेता है, उसको वक्त देता है कि डिस्क में जहाँ पे भी एक कोई जो भी मसला बना है उसमें कोई टेर आया है, कोई हल्का फुल्का सा वहाँ पे एक दबाव आया है और उसके बाद जो है अतराफ में सोजिश वगैरह है, तो वो वक्त के साथ साथ ये होगा कि वहाँ पे एक रिपेयरिंग का अमल जो होता है वो एक बहबूदी का अमल वो चलता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर एहतियात नहीं करता या बंदे को आगाही ही नहीं होती कि मैंने यहाँ पे क्या करना है, वो अपनी रोज़मर्रा के काम जो है वो करता रहता है, अगर जब यहाँ पे मसला बनता है तो उस मसले में ये होता है कि आपने वज़न जो है वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होता है, मोटरसाइकिल की सवारी बहुत ख़तरनाक होती है, या किसी ख़ास हालत में जिस तरह हम बैठे हुए हैं यहाँ पर एक ख़ास हालत में ज़्यादा दौरानी के लिए बैठना वो ख़तरनाक होता है, तो फिर ये लगातार जो है वहाँ पे खराबी आती जाती है और असाब पे दबाव जो है बढ़ता जाता है। और जिस तरह हमने डिस्क के अंदरूनी हिस्से में बात की कि वहाँ पे जेलीनुमा मादा होता है, अगर बाहर वाला हिस्सा डिस्क का कमज़ोर होता है, उसके उसको जो लिगामेंट सहारा दे रही होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो फिर वो जो जेलीनुमा मादा होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, ज़्यादा दबाव डालता है, और अगर वो बाहर वाली जो तय है वो टूट जाती है तो फिर असाब पे पूरी तरह जो है वो दबाव में चला जाता है। तो इसका जो शदीद नुकसान है वो ये भी हो सकता है कि आपका नीचे वाला जो धड़ है अगर हराम मग्स पे स्पाइनल स्टीनोसिस की सूरत हाल इख्तियार करता है के दरमियान में, तो वो आपका पूरा जो नीचे वाला धड़ वो काम करना छोड़ सकता है, स्पाइनल कार्ड उथल तरह की अगर जो इंजरीज होती हैं, और दूसरी सूरत में अगर वो नर्व रूट है किसी दाएं तरफ या बाएं तरफ की नर्व, जिस नर्व रूट पे वो दबाव डाल रहा है तो वो वाले हिस्से पे उसकी जो इलामत हैं वो जो डर्माटोम्स हैं उसके वहाँ पे इसकी इलामत जाहिर होती जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जब ये इस तरह का कोई मसला हो, फ़र्द को मुतलका फ़र्द को शक हो कि मुझे डिस्क का मसला है, पहले तो आगाही बहुत ज़रूरी है कि पता हो कि यहाँ पर इसकी साख्त किस तरह की होती है, इतना हमारे माशरे में इतना बहुत ज़रूरी है कि डिस्क का बारे में पता हो कि ये मसला हो सकता है, और ताकि वो मुआलिज के पास जाए। इसको अगर आम दर्द समझ लिया जाए कि देखें सही है कहीं पे चोट लगी दर्द हो रहा है वो खुद बहुत ठीक हो जाएगा, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है ये हसास है, ये जिस्म के बाकी हिस्सों की तरह नहीं होता है, इसका बहुत ज़्यादा जो आप काम काज कर रहे हैं आप चलते फिरते हैं, आपके निचले थर्ड का पूरा दारोमदार जो है आपकी रीढ़ की हड्डी से जो हरा मग्ज़ गुजर रहा है उससे जो असाबी शाखें निकल रही हैं उस पे
जी
होता है। देखिए अब इस तस्वीर में एक दो तरह के जो है आपकी स्पाइन में मसले पेश आते हैं, एक स्कोलियोसिस होता है और एक काइफोसिस होता है। काइफोसिस वो वही जाविया, अगर वो जिस तरह हमने बात की कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो सी शक्ल में जो होता
जी
है तो बाद में वो सी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन बाद में चल के ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो दोबारा कुछ जाविये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और वो एक ख़ास जो जाविया जो है काइफोसिस वाला वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर आपने ये भी देखा होगा कि पहले तो बहुत नज़र आते थे जो बूढ़े अफराद हो जाते थे तो वो झुक के वो उन्होंने छड़ियाँ पकड़ी होती
जी
थी और
बिल्कुल
वो चल रहे होते थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक शरह जो है उसकी कम हो गई है। हो सकता है कि जो जहाँ तक बाज़ुकात मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो हमारी जो चारपाइयाँ होती थीं उसमें वो जो जब लेटते थे तो वो इस तरह की हालत चली जाती थी कि वो जो कर्व हैं वो ज़्यादा दौरानी के लिए जो है वो ख़ास हालत में रहते थे, और जैसे जैसे फिर उम्र ज़्यादा होती है ये जो वर्टिब्राज हैं इनमें तब्दीलियाँ आती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ इनको आती हैं जो कर्व जो हैं उनको तब्दील करती हैं, तो उसके बाद जो है वो सीधे होने वाला जो है उनमें वो एक तरह का कंसेप्ट या वो एक आदत नहीं होती, तो वक्त के साथ साथ इंसान वो वाली जो शक्ल है उसमें ढलता चला जाता है। तो दूसरी जो स्कोलियोसिस है, स्कोलियोसिस के भी मुख्तलिफ जिस तरह मस्कुलर बैलेंस की बात की थी, अगर खुदा ना खास्ता किसी एक आपको मसला भी है, एक तरफ के मसल जो हैं वो उनमें सोजिश है तो वो रीढ़ की हड्डी को एक तरफ खींचेंगे, या अगर बाज़ लोगों को ये सादा सूरत हाल जो
जी
बता रहा हूँ कि कोई किसी को एक तरफ बैठ के लिखने की आदत है, उसका काम लिखना है, तो वो बाज़ुओं को आदत होती है एक ख़ास तरफ को जो
जी
है
बिल्कुल
वो
हाँ
झुके हुए हैं, तो वक्त के साथ साथ उनकी रीढ़ की हड्डी में एक डेविएशन सी आ रही होती है, वो एक तरफ को रीढ़ की हड्डी जा रही होती है, तो ये हल्के फुल्के जो हैं वो इस तरह के, और बाज़ मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में ये जो है रीढ़ की हड्डी मुख्तलिफ अतराफ में ये जाती है, तो ये इस तरह के मसाइल हैं जो जो स्ट्रक्चरल जो साख के लिहाज से रीढ़ की हड्डी को पेश आ सकते हैं।
एक हमें मैसेज अभी आया, हकीम सबा ने हम लोगों के लिए भेजा है, क्या विटामिन डी कुछ हेल्प कर सकते हैं डिस्क प्रॉब्लम खत्म होने में? डॉक्टर साहब
जब डिस्क का मसला हो गया तो विटामिन डी ने फिर उसको ख़त्म तो नहीं कर लेना, लेकिन ये कि विटामिन डी आप पहले से एहतियात करते रहें, अपनी खुराक में कैल्शियम विटामिन डी इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें और वो यहाँ तक मसला जो है वो पहुँचे ही ना, थोड़ा बहुत होता है आखिर बिलाकर उसकी रिपेयरिंग में मदद करती है, लेकिन वो इस तरह नहीं कि वो मसले को ख़त्म कर देगी विटामिन डी। अब देखिए वो सारे, अब इसकी कमर दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हैं, इसमें रेफरल पेन भी आ जाता है, बाज़ का ये होता है कि मसला किसी और जगह पे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, मसलन गुर्दों में मसला है तो वो रेफर होके दर्द जो है आपकी कमर में आ रहा होता है, तो इसलिए मालिज के पास मालिज से रजू करना चाहिए। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि खुद से अब दर्द हो रहा है वो ठीक है जी कोई जाके पेन किलर ले ली और लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये पेन किलर का बहुत बुरा असर होता है, आपके जो मैदा है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है इसको ख़त्म करके रख देता है, यानी कैंसर की हद तक ये मसले जाते हैं,
अच्छा।
और कमर दर्द की वजह से बंदा नहीं मरता लेकिन वो मैदे के कैंसर की वजह से जो है वो बंदा उसकी मौत होती है, तो इसलिए एहतियात आगाही बहुत ज़रूरी है। इस तरह का अगर कोई मसला पेश आता है तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें और मसले की असल वजह जो है उस तक पहुँचें और फिर इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार किया जाए। बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को डिस्क का मसला होता है या कमर के जो पट्टे हैं उनके वो कमज़ोर हैं तो हल्की फुल्की जो एक्सरसाइजेस हैं, एक तो पहले ही बंदे को एक्सरसाइज करते वर्जिश करते रहना चाहिए ताकि जिस्म पट्टे सारे जो हैं चीज़ें लचक उसमें वो जो मतलूब है वो बरकरार रहे, मजबूती रहे। फिर ऐसे भी अगर जब उम्र ज़्यादा हो रही है तो उसमें ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम जवानी में या 30 साल की उम्र तक जो हम वज़न उठा लेते थे वो हम 45 साल या 50 साल की उम्र में भी उसी अंदाज से जो है उसको उठा लें, एहतियात बरतनी चाहिए, और जिस तरह का हमारे हमारी तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील होती जा रही है वक्त के साथ जो ज़रूरत है उसको भी इस अंदाज से ढालें कि आपकी कमर पे या जिस्म के दूसरे हिस्सों पे उसके बुरे असरात ज़्यादा ना पड़े।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मौजू बे इंतहा वसी है कमर के दर्द के हवाले से। माशरे में बहुत ज़्यादा अब देखा जाने लगा है, और जैसा कि शुरू प्रोग्राम में अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि हत्ता अब नौजवानों में ये मसाइल हैं, और वही अदम तहर्रुक नई तर्ज़ ज़िंदगी हो गई है, लेकिन हम लोगों ने अपने बदन को नई तर्ज़ ज़िंदगी से आशना नहीं किया है।